श्वास धीरे धीरे छोड़ते जाएं, मेरी चंचलता और अहंकार धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। श्वास भरें एकाग्रता और प्रसन्नता को, भीतर भर रहा हूं। तो ये प्राणायाम 100 गुना विशेष प्रभाव तन पे मन पे मति पे गति पे करेगा। 1 से 1.25 मिनट श्वास रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। लेते समय एकाग्रता और भगवत शांति, छोड़ते समय चंचलता और नकारात्मक विचार छोड़ दिए। ये विश्रांति योग की साधना है। चित्त की विश्रांति योग की दशा सामर्थ्य को प्रकट करती है। दुखों को रोगों को विदाय देती है। मैं सर्वनियामक, सर्वनियंता, सर्व का सुहृद, सर्व का हितेशी और सर्व को सहज सुलभ हो जाऊं, ऐसा हूं और उसे इन 8 साधनों में से किसी भी साधन के द्वारा तुम मुझ परमेश्वर के सुख को, शांति को, साथ सहयोग को पा सकते हो। भागवत के 11वें स्कंद 27वें अध्याय और 9वें श्लोक का आज सत्संग थोड़ा सुनोगे। अपने जीवन में उद्देश्य को जानना बहुत ऊंची अमीरी है। उद्देश्य बनाना ये गरीबी है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं वकील बनूं, मैं फलाना बनूं, ये वासना प्रेरित अंधाधुंधी होड़ में मैं MBA कर लूं, मैं BTEC कर लूं, मैं MD बन लूं, ये कर लूं, तो ये उद्देश्य बनाया हुआ है, ये भी एक गरीबी है, एक प्रकार की समझ की गरीबी है। उद्देश्य बना लिया और उसमें जूझते रहे, वहां पहुंचे तो देखा खालीपन। मैनेजर बैठे हैं, मैं जॉब करूंगा, ये करूंगा, 40 लाख की सैलरी मिलती है, लेकिन अब क्या हाल है कि बापू सब सुना है। यही अनुभव है संजय का। 40 लाख तो मिलते हैं, विदेशी कंपनी का मैनेजमेंट भी मिल गया, आदर मान भी मिलता है, लेकिन आखिर क्या वो लोग हमें नोचते। हमको 40 लाख मिलते, हमारे द्वारा 10-15 करोड़ देश के नोचते, तब हमें 40 लाख देते और क्या करते। तो सही समझ की कमी भी एक प्रकार का बहुत बड़ा भारी नुकसान है। तो एक उद्देश्य बनाना होता है, दूसरा उद्देश्य जानना होता है। तो उद्देश्य बनाकर जो चलते हैं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो तो बिल्कुल व्यर्थ उसकी जिंदगी, बिना पतवार के, बिना स्टेरिंग के गाड़ी जैसी है। लेकिन जो उद्देश्य बना लेते हैं जाने बिना, उनका जिंदगी भी ऐसे ही बिचारेगी। अच्छे लोग होते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि सब बेचारे बुरे होते हैं, मेहनतू भी होते हैं, काफी जूझने वाले होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, लेकिन उद्देश्य बनाकर फंस जाते हैं। उद्देश्य छोड़ना भी नहीं चाहिए, उद्देश्य बनाना भी नहीं चाहिए, उद्देश्य जानना चाहिए। लेकिन आज भगवान कृपा करके जो भागवत में बताए हैं, अपने उद्देश्य को एक तो आप जान लो, और भगवान ने बताया कि कैसे पालो, ये मेरे से सुन लो। उद्देश्य जानना है, क्या उद्देश्य जानना है, कि प्राणी मात्र का उद्देश्य है कि मैं सब दुखों से निवृत्त हो जाऊं। और खाली दुख मिटाना ही उद्देश्य नहीं है, आनंद पाना उद्देश्य है। आप घर में बैठे, कोई दुख नहीं है, आप चुप नहीं बैठ सकते। रस के लिए TV खोलोगे, वहां से रस बदला तो चैनल बदलोगे, वहां से रस बदला तो चाट पकोड़ा खाओगे, वहां से रस बदला तो बाजार में जाओगे। केवल दुख मिटाना उद्देश्य नहीं है, रस लेना भी आपका उद्देश्य है। तो एक रस होता है इंद्रिय जन्य, भाई देख के, खा कर, सूंघ कर, स्पर्श करके, संभव करके रस लेते लेते जीवन नीरस हो जाता है, उस रस को बोलते क्रियाजन्य सुख। दूसरा होता है मंदिर में गए अथवा देव पूजा में बैठे और ध्यान किया, जप किया, ठाकुर जी की पूजा की, बड़ा अच्छा लगा। ये भाव जन्य रस है, ये भाव कभी बनता है, कभी मजा आया, कभी नहीं आया। बिल्कुल सच्ची गुजरी सबके हृदय की बात कह रहा हूं, मैं वहां से गुजरा हूं, हजारों लाखों साधक भी मेरे गुजरे हैं। दूसरा है भाव जन्य रस, तीसरा है भाव जन्य रस में अगर एकाग्रता और ओमकार की या कोई उपासना लंबा दीर्घ प्रणव, तो फिर भाव जन्य रस तो भाव तो बदल जाते हैं, शांत रस उससे भी ज्यादा गहरा स्थिर रहने वाला और बुद्धि को ऊंची करने वाला है। लेकिन शांत रस भी सदा नहीं रहता, उठने का मन करेगा, आवश्यकता पड़ेगी। आज सुबह में 12:28 को उठा हूं, तो ऐसा नहीं काम करता रहा, उसी शांत रस सुबह तक बैठे रहे, फिर बाद में इधर यात्रा करते करते सत्संग करते करते अभी यहां पहुंचा हूं। तो शांत रस, फिर सविकल्प समाधि का रस, निर्विकल्प समाधि का रस। लेकिन निर्विकल्प समाधि है तब रस, फिर उठे तो आपदा भी हो जाएगी। तो आप तो सदा रस चाहते, सदा आनंद चाहते, उस वहां से नहीं हुआ तो दूसरा कुछ करेंगे, तीसरा कुछ करेंगे, आनंद बना रहे, दुख मिटा रहे, यही सभी का उद्देश्य है। MBA उद्देश्य नहीं है, मैनेजर बनना उद्देश्य नहीं है, दुख मिट जाए और सुखी रहूं, आनंदित रहूं, ये उद्देश्य है सभी का। फिर जहां जॉब मिले, जो पत्नी मिले, कुल मिलाकर दुख मिटे और सुख बना रहे, आनंद बना रहे, रस बना रहे, ये सभी का जन्मजात उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य को किस तरीके से पार करना, ये अपने मन से करेंगे तो धोखा खाएंगे, और जो मन और बुद्धि में भटक रहे हैं उनकी सलाह से करेंगे तो भी सारा समाज खींचा जाएगा। तो एकनाथ जी महाराज ने कहा कि जब तक 8 प्रकार की जो ये उपासना भगवान बताते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जब तक 8वां सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिलता, तब तक शास्त्र का ज्ञान भी अपनी अपनी वासना पूर्ति वाले कुटुंबी परिवार जन, समाज के जन, नेता जन, ये वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भाषण देकर उपदेश देकर आपको उधर ही ढालेंगे। पत्नी कहेगी कि आपका तो कर्तव्य है ना, ये कर देना, ये ला देना, शास्त्र का अर्थ अपने पक्ष में कुटुंबी घटित करके आपको पिट्ठू बना देंगे, आपका उद्देश्य वहीं रह जाएगा। पति कहेगा देख सती सावित्री कैसी थी, मदाल छा कैसी थी, फलानी कैसी थी, तुझे जरा तो ख्याल रखना चाहिए। पति को छोड़कर, पति को ना खुश करके तेरे को भगवान कभी नहीं मिल सकते, और वो शास्त्र के प्रमाण देगा, घटनाएं देगा, इतिहास की बातें देगा। तो अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग एक दूसरे को उल्लू बनाकर गुमराह कर देंगे। इसलिए 8 प्रकार की मेरी प्राप्ति में भागवत का श्लोक मैं उच्चारण करता हूं, भगवान बताते हैं, और एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि 8वां प्रकार जो भगवान ने कहा है, तो अर्चयाम स्थानिले नेवा सूर्य वापसु हृदय द्विजे है द्रव्येण भक्ति युक्तो चेत स्वगुरु मम माया। पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वैदी में, आहुति आदि में, अग्नि में, सूर्य का ध्यान आदि में, जल में भगवत बुद्धि, हृदय में भगवत बुद्धि, ब्राह्मणों में आदर बुद्धि, और ब्रह्म परमात्मा जिसका आत्म रूप में प्रकट हुआ, ऐसे सद्गुरु में जिसकी सर्वोपरि बुद्धि हो जाती है, वो सामाजिक बंधनों से, कल्पनाओं से और भंवरों से पार होकर मुझ परमात्मा रस को पा लेता है। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या की, और जैसा मन में आया ऐसा उद्देश्य बना दिया। हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की और मनमाना उद्देश्य बनाया, रावण की नाई मैं हिरणपुर बनाऊंगा, रावण ने लंका बनाई, लेकिन उद्देश्य जाना नहीं, उद्देश्य बनाया। उद्देश्य जानो तो पता चलेगा कि सर्व दुखों की निवृत्ति और नित्य नवीन रस की प्राप्ति, ये सबका उद्देश्य है। आप बीड़ी फूंकते तो भी रस के लिए, पान चबाते तो भी रस के लिए, पिक्चर और गाना देखते तो भी रस के लिए, और गाना और पिक्चर चैनल बदलते तो भी रस के लिए। अपने घर में भोजन बना रही फिर पड़ोसी के घर लटार मारने जाती है तो भी रस के लिए। पति को ये पत्नी को मित्र को याद करते हैं या गपशप लगाते हैं तो भी रस के लिए। यहाँ आए हैं तो भी कुछ नवीन रस पुण्य मिले, थकेंगे तो यहाँ से जाएंगे तो भी रस के लिए। रसो वैस वैश्वानर, परमात्मा रस स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और सबका अंतरात्मा है, इसलिए सब रस के लिए ही यत्न करते हैं। मधुमक्खी भी और सामान्य मक्खी भी, कीड़ी से लेकर कुंजर तक, सुबह से लेकर शाम तक, जीवन से लेकर मौत तक, सभी दुख से बचना और सुख में टिके रहना वही चाहते हैं। सभी का उद्देश्य वही एक है, लेकिन उस एक उद्देश्य की शुद्धता न जानने के कारण कोई नाक के द्वारा सुगंध का रस लेता है, कोई जीभ के द्वारा व्यंजनों का रस लेता है, कोई मूत्र इंद्रिय के द्वारा काम विकार का रस में गिरता है। तो ये रस में गिरते गिरते जैसे ना समझ पतंगिया रूप रस में अपने को खपा देता है, जला देता है। भंवर स्वाद रस में अपने को खपा देता है। तो तुलसीदास जी ने कहा, अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आन, एक एक रस आंच, तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। मछली स्वाद रस में कुंडी में फंस मरती, पतंगिया रूप रस में आग में जल मरता है, दिए में अथवा ट्रैफिक की गाड़ियों के नीचे, खेत खली में बैठे लेकिन लाइट का मजा लेने के लिए वो मजा उनके लिए सजा हो जाती है। मजा तो सबकी मांग है लेकिन शुद्ध मजा का पता नहीं है, तो फिर इंद्रियगत मजा, भावगत मजा, कामगत मजा, लोभजन मजा, जैसे लोभी को पैसा कमाने में रस आता है, बोले बाबा क्या करे, फुर्सत नहीं मिलती, मरने की भी फुर्सत नहीं, लेकिन मरना आए तो क्या फुर्सत लेके आएगा कि ऐसे आएगा। बीमार हो जाते हैं तो एडमिट हो जाते हैं, मरने की फुर्सत नहीं, लोभ इतना हावी हो गया। ऐसे कर्म की आसक्ति ऐसी हावी हो गई कि समझने की फुर्सत नहीं। तो ये सारी गलतियां सत्संग में समझ में आती है, फिर निकालने की युक्ति भगवान बताते, संत बताते कि भाई ये हल्के रस तुम्हारे को धीरे धीरे हल्की जिंदगी में हल्की योनियों में ले जाएंगे, ऊंचे रस ऊंचे लोकों में ले जाएंगे, लेकिन रस के मूल से मिलोगे तो जहां मैं बैठा हूं वहां तुम पहुंच जाओगे। भगवान जिस रस से रसवान है, तृप्त है, क्योंकि भगवान का चैतन्य आत्मा और आपका चैतन्य आत्मा दो नहीं है, एक ही है। तरंग का पानी और समुद्र का पानी एक ही है। हजार वोल्ट का बल्ब जल रहा है प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के पूजा ग्रह में, और वहीं दिल्ली में एक गंदी बस्ती के बाथरूम में जीरो बल्ब अथवा 15 का बल्ब जल रहा है। बल्ब और जगह अलग अलग है लेकिन सत्ता पावर हाउस की वही है। आकाश दिल्ली का वही है। ऐसे ही आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म चिदाकाश स्वरूप परमात्मा की सतता, परमात्मा की चेतनता, परमात्मा की आनंदता, परमात्मा की ज्ञान सत्ता सभी में है। यहाँ तक कि मच्छर में भी वो परमात्मा की चेतना है और ज्ञान है। लोग उसको सलाम मारते कि आप तो DIG में से IG बन गए, बोले बापू की कृपा है, IG में से गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आया, और बापू ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, अब आपको DGP बनने का मौका मिला, 13 लोगों को जंप मार के आप DGP बन गए, सब सलाम मारते, लेकिन मैं ऐसे डीजीपी को कहता हूं कि तुम्हारे आगे सब सलाम मारते तो होशियार हो, ये हो, लेकिन मच्छर की अक्ल के आगे तुम्हारी अक्ल हार मानेगी। हाँ रुको मैम, कौन बोल रहे हो? बोले आईजी बोल रहा हूँ। अच्छा मैं फलाना बोल रहा हूँ, डीजीपी बाद में बात करते। फोन रख दिया और मच्छर कान के आगे गुनगुना रहा है। बड़े बड़े ऑपरेशन किए और उसका गोल्ड मेडल भी मिला है। फौजियों को लेकर सोनी दरबार में अपना अमृतसर पहुंचा था, ऐसे फौजियों पर भी भारी पड़ गए और आईजी डीजीपी बन गए। ऐसे अक्कल वाले आदमी अब फोन रख के एक मच्छर को पकड़ने में अपना पूरा अक्कल लगा रहे। मच्छर को अक्कल किसने दी कि इस झटके से ऐसे बच के निकलो, हाथ खाली रह गया, धत तेरी। मच्छर के आगे हार गए डीजीपी। नहीं हार सकते क्या? मच्छर राष्ट्रपतियों को भी हरा बैठे तो मच्छर को अक्कल किसने दी? बापू को भी हरा बैठेंगे। मैं भी कोशिश करता हूं लेकिन कई बार मेरे को भी चकमा दे के मच्छर छटक जाता है। बिल्कुल सीधी बात है, आपसे भी ये हाल होगा। तो ये कैसा परमेश्वर का ज्ञान स्वभाव है कि छोटे से छोटे जीव में भी ऐसी युक्ति दे देता है। आज सुबह मैं उठा 12:28 को बिस्तर से, आंख तो उसके पहले खुली थी क्योंकि रात को 8:30 सो गया था। अब मिलेंगे लोगों से तो टाइम जाएगा, थकान है, रात को बिना खाए पिए सोना है तो जल्दी सो जाता हूँ। लोग इंतजार करते करते फिर मानस भक्ति में घर चले जाते। सुबह में छत पे कंटाड़ू हनुमान के इलाके पे छत पे गया, सूर्योदय में कुछ मिनट थे, उजाला हो गया था। हाँ जो लाइट का लगा था थोड़ा सा पाइप, उस पाइप पे वो कैसे चढ़ा होगा करोड़िया, फिर इधर लाइन लगाई उधर लगाई और नेट ऐसी बनाई कि कोई भी मच्छर जीव जंतु आराम से फंस जाए, कितनी भी हवा चले आंधी तूफान चले उसका वो जाला टूटे नहीं। ऐसा ऐसी सी क्या इधर से वहाँ कैसे पहुँचा और वहाँ से फिर इधर, एक लाइन ऐसी दी, एक इधर दी, फिर अंदर अंदर उसको मजबूती दी, अपने शरीर से जाला निकाला और कितना गोल, तुमने देखा है जिसने देखा हाथ ऊपर करो, करोड़िया जाला बनाता है। मैं क्या इसको अक्कल कौन देता है? कौन सी कॉलेज में गया होगा? किसी इंजीनियर को इतना रॉ मटेरियल दियो तो वो नहीं बना पाएगा जितना करोड़िया में अक्कल है। मैं नहीं बना पाऊंगा। तो मानना पड़ेगा कि भगवान चैतन्य है, सत है और ज्ञान स्वरूप है, और भगवान से छोटा कोई नहीं, भगवान सबसे छोटे में छोटे हैं। बैक्टीरिया भी भगवान से बड़ा है, बैक्टीरिया के अंदर घुसने वाला बैक्टीरिया से छोटा है, क्या ख्याल है? और भगवान बड़े इतने हैं, बड़े इतने हैं कि सारा आकाश, ये एक सृष्टि नहीं अनंत सृष्टियां भगवान के एक माया के, भगवान की माया माया के एक हिस्से में फुरफुरा के लीन हो रही। अणुरो अणुयान महतो महयान, भगवान छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े। जैसे आकाश छोटे से भी छोटा है बैक्टीरिया के अंदर भी, और इतना बड़ा है कि हम सभी और सभी आकाश गंगाएं आकाश में है। तो भगवान भरण पोषण की सत्ता, गमनागमन की सत्ता, वाणी की स्फूर्णा सत्ता, और ये सब नहीं हो जाए फिर भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता वही भगवान है। तो उस भगवान ने भागवत में 11वें स्कंद में कहा, 27वां अध्याय 9वां श्लोक, अर्चया स्थंडीले अनुवा सूर्य वप्सु हृदय द्विजे द्वेणे भक्त्या युक्तुर चेत सद्गुरु माम माया। पूजा की सामग्रियों द्वारा मूर्ति में देवी देवता भगवान गुरु आदि की जो मूर्ति है उसमें मेरी पूजा की जा सकती है मुझ चैतन्य को पाने जानने के लिए। दूसरा वेदी में आहुति दे इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नामामा, ये इंद्र के लिए, ये वरुण के लिए, ये कुबेर के लिए, ये फलाने, मेरा नहीं, ममता हटाए तो मेरा नहीं है तो एक तो मैं और दूसरा मेरा, ये दोनों माया है तो वस्तु मेरी नहीं है। फिर शरीर को जो मैं मानता हूँ वो मैं नहीं हूँ, शरीर के बाद भी जो रहता है वो चैतन्य मेरा परमात्मा। इस ढंग की समझ से वेदी के द्वारा पूजा होती है। तीसरी पूजा भगवान बोलते हैं सूर्यदेव की, आंखें बंद करके सूर्य नारायण का ध्यान करना, बुद्धि भी विकसित होती है और भगवत साधना भी मानी जाती है। अग्नि में आहुति के द्वारा अथवा अग्नि देवता के ध्यान के द्वारा भी उनकी पूजा भगवान की पूजा है। फिर भगवान कहते हैं जल तत्व भी मेरा ही स्वरूप है, आपो अपसु कौनते हैं प्रभास्मि शशि सूर्यो। जल में एक दृष्टि करे अथवा गंगे यमुने करके आचमन लेता है, पंचामृत आदि बनाता है तो जल में जो भगवत भाव है, आदर भाव है और उसमें जो शांति पूजा पुण्याई होती है वो भी मेरी पूजा का एक तरीका है, ये पांचवा छठा तरीका। सातवा है हृदय में मेरी पूजा करें। हृदय श्वास लेता है तब ठंडा होता है और छोड़ता है तो गर्म होता है, वहाँ घर्षण पैदा होता है, उस घर्षण से गर्मी 20 वोल्ट की गर्मी तो दिमाग में रहती है और सारे शरीर में गर्मी मेंटेन रहती है तभी शरीर रहता है उस श्वास उच्छ्वास। तो हृदय में जो हृदय तो है तो बोले भगवान हृदय में है तो हृदय बड़ा भगवान छोटे, लेकिन भगवान हृदय की एरिया में उतने लगते लेकिन सत्ता भगवान की अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। बीज छोटा लगता है लेकिन उसमें संस्कार कैसे हैं कि बड़ा वट वृक्ष भी छुपा है उसमें, एक बीज में कितने वृक्ष छुपे हैं सारे विज्ञानी मिलकर उसका गणित नहीं लगा सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही एक मनुष्य से कितने मनुष्यों की परंपरा चलेगी ब्रह्मा जी नहीं बता सकते। तो हरि अनंत है तो हरि की हर चीज भी तो अनंत की खबर दे रही है। एक बीज का अंत हो जाएगा क्या? एक बीज बोया आम का, उससे आम का वृक्ष बना और कल्पना करो कि हजार फल लगे। अब हजार फल की फल खा लो और बो दो, फिर हजार पेड़ हुए, वे हजार पेड़ों की गुटलियां बो दो, अब वो कितना कतक पहुंच सकता है एक आम का या एक वट वृक्ष का बीज, कितने बीज दे सकता है, उसका कोई अंत है क्या? तो जैसे वो बीज है ऐसे ही हर चीज अनंत की चीज, अनंत की खबर है। इसलिए ये आठ प्रकार की उपासना बताते भगवान। तो हृदय में मेरा ध्यान करें। हृदय में मेरा ध्यान करे चतुर्भुजी रूप का, द्विभुजी रूप का, अथवा तो श्वास अंदर जाए उसको देखे, बाहर आए उसको गिने, वो अंतरंग ध्यान करे, बहिरंग ध्यान करे, सुख आया दुख आया काम आया क्रोध आया उसको देखे, उसके साथ जुड़े नहीं, तो ये भी मेरी एक प्रकार की अंतरंग उपासना है, एक से एक प्रभावशाली उपासना है। फिर ब्राह्मण में मेरे स्वरूप को देखे, जो ब्रह्म को जानने का यत्न करते, जिनका खान पान सात्विक व्यवहार है और मुझको पाने के लिए जो लगे हैं, ऐसे ब्राह्मण देवता में भी मेरा भाव करे और उनके सद्गुण ले। फिर आठवीं पूजा बोलते कि जिनको अवतार लेकर मैं पूजता हूँ, ऐसे आत्मवेदा सदगुरु तो मेरा स्वरूप भी है, मेरा आदरणीय है, मेरा भी पूजनीय है, तो मेरे भक्तों का पूजनीय कैसे नहीं हो सकता है। तो जिन्होंने मेरे सत स्वभाव को पाया है, चैतन्य स्वभाव को पाया है, आत्मनंद स्वभाव को पाया है, ऐसे सदगुरुओं के आगे हमारे जो वेद शास्त्र अथवा रीति रिवाज हैं, वे सदगुरु की नजरिया से ही हमारी मान्यताओं की जालें कटती है। नहीं तो शास्त्र और सामाजिक व्यवस्था, हमारे रीत रिवाज की व्यवस्था हमको ऐसे बंधनों में बांध देती है कि उधर से निकले तो उधर फंसे, उधर से निकले तो उधर से फंसे। जैसे करूड़िया जाल बना देता और जीवों को फंसा देता है, ऐसे ही पत्नी का अपना जाल है, पुत्र का अपना जाल है। पिताजी तुम्हारा कर्तव्य, मैं छोटा हूँ, मैं पढ़ लिख लूँ फिर जाइए भजन करने को। बाप का अपना जाल है कि पिता को छोड़कर कहाँ जा रहा है बेटा, पिता की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य। सब अपना अपना उल्लू बनाने के लिए परिवार वालों को उल्लू बनाकर नोच कर छोड़ देंगे। नेता बोलेगा तुम मेरे काम ही आओ, सब आपको अपने अपने काम में लाकर नीचो कर छोड़ देंगे। जब सदगुरु मिलेंगे तो बताएंगे कि दूसरों के काम तो आ गए, लेकिन दूसरों के काम वही आता है जो अपना काम निपटाने में सजाग रहता है। नहीं तो अपना काम निपटाने में सजाग नहीं तो दूसरों के काम आने वाला भी वफादार नहीं रहेगा। जैसे बुद्ध ने अपना काम निपटा लिया तो दूसरों के काम अच्छी तरह से आए, कबीर ने अपना काम निपटाया या हमने अपना काम निपटाया तो दूसरों के काम आते हैं अच्छी तरह से। अगर हम अपना काम भटका दे देते और कोई डिग्री के पीछे लग जाते और ऐसा बनूं ऐसा बनूं तो दूसरों के काम हम इतना नहीं आ सकते थे। कल दो जगह भंडारे थे और आदिवासी जब ले जा रहे थे उनके चेहरे की रौनक देखकर लगा कि अपने इनके काम आए तो इनको खुशी आ रही। अभी हम आपके बीच बैठे हैं, हम चाहें तो आपसे मिलें, लाइन लगवाएं, रुपए पैसे ऐंठना हो तो खूब ऐंठ सकते हैं। दिवाली में दान का ये महत्व है, आय का 10% देना चाहिए शास्त्र को। लेकिन ये हम आपके काम नहीं आए, आपके धन के काम, हम तो आपके काम आने के लिए आपको लाइन में से इसमें से इसमें से रोककर आप जितने भी उन्नत हो सकते उतना मैं यत्न करता हूँ सब प्रकार से। तो जो अपने काम ठीक से आ गया, एकांत और ईश्वर उपासना अपने काम आना है, शरीर से समाज के काम आते हैं, मन से भगवान के काम आते हैं और बुद्धि योग से मनुष्य अपने आप में काम आता है। तो शरीर से भले हम एक दूसरे के समाज के काम आए, लेकिन इतना घिस पिट न डालें अपने को कि भगवान के काम ना आए। मन से भगवान के काम आएंगे तो शरीर से थोड़ा आराम भी चाहिए, मन को शांति भी चाहिए। तो प्रीति करो भगवान से तो भगवान के काम आ गए, समाज के यथा योग्य काम आ जाओ, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, अविद्वान को विद्वान, ना समझ को समझ, कुल मिला के जिसको जैसे यहाँ अब भी और बाद में लाभ हो ये कोशिश करना, ये समाज के काम आना। इसका मतलब ये नहीं है कि शराबी को अंडे और मांस चाहिए तो उसके काम आ जाओ, कामी विकारी को भोग चाहिए तो उसके काम आ जाओ विकारों में, ये अर्थ नहीं लगाना। शास्त्र मर्यादा के अंदर रह के सेवा करना। चलो किसी के काम आ जाए, अब दिवाली के दिन है, 5,000 रुपया मुझे दान करना है, किसको दूं? अरे 5,000 रुपये की फिल्म की टिकटें ले आओ और रेलवे स्टेशन पर कुलियों को मार दें, ये बेचारे खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा इनको। तुम्हारे 5,000 का तो सत्यानाश हुआ, उनके मन का, नेत्रों का, समझ का सत्यानाश हुआ, ये तुम उनके काम नहीं आए। तो देश काल और पात्र देखकर उसकी उन्नति हो, उसको मजा है ये काम नहीं है, इनको इनका मंगल हो। तो देश काल और पात्र देखकर उसकी उन्नति हो, उसको मजा है ये काम नहीं है, इनको इनका मंगल हो। मंगल के साथ मजा आता हो तो हरकत नहीं, लेकिन अमंगल करके मजा ना दिलाओ। तो शरीर से हम समाज के काम आ गए, माता पिता पत्नी लोगों के, मन से हम भगवान को प्रीति करें अपना माने, भगवान के काम आ गए। और बुद्धि से हम अपने आत्मदेव को जाने और बुद्धि दाता, बुद्धि का अधिष्ठान, बुद्धि बदलती है, सात्विक बुद्धि एक ऐसी होती है, राजसी ऐसी होती है, तामसी ऐसी होती है, ये तीन गुणों वाली बुद्धि बदलती है, लेकिन एक ऐसा तत्व है कि तीनों गुणों की बदलाहट को भी जानता है। ऐसा करके बुद्धि योग करके हम अपने आप के काम आ जाए, और अपने आप के काम आ गए तो नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन आनंद। फिर रस के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। इंद्र कहते हैं कि ऐसे आत्मवेता सदगुरु मिल जाए तो परम सौभाग्य। मुझे सुख लेना है तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब सुख मिलता है। लेकिन जिसने अपने आप को पा लिया है, अपने आप के काम आ गया, ऐसे महापुरुष की दृष्टि पड़ती है तो आम आदमी को सुख शांति और नया नया रस मिलने लगता है, नया नया ज्ञान मिलने लगता है, नई नई समझ मिलने लगती है। तो रावण सोने की लंका बनाने में सफल हो गए, हिरणाकश्यपु सोने की हिरणपुर बनाने में सफल हो गए, और बिना बुवाई के दृष्टि डालता तपोबल से और जमीन पैदावार देती, दरिया किनारे दृष्टि डालता दरिया रत्न उछाल के फेंक देता, पहाड़ और पर्वतों पर दृष्टि डालता तो खनिजों में से हीरे मोती जवाहरात और भी कई पदार्थ आ जाते। ऐसा उसका तप था, लेकिन शरीर और मन और बुद्धि तक तो पहुंचा, इस तपमय बुद्धि एकाग्रता तो मिली, लेकिन बुद्धि दाता नित्य नवीन रस वाला है, ये पाकर जो सुख लेते वो बाहर का सुख है, स्वतः सिद्ध जो सुख है वो तो साक्षात्कारी गुरु मिला होता इन दोनों सज्जनों को, और उसकी नजरिया से चले होते तो साल दो साल में ऐसी चीज पाते कि 60,000 वर्ष में जो पाया वो नाश हो गया, लेकिन सद्गुरु मिले तो 40 दिन में जो मैंने पाया है वो कभी नाश नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं सद्गुरु की महिमा, ऐसा सद्गुरु की आराधना पूजा मेरी एकदम सीधी सादी और सहजता में मुलाकात वाली, मुलाकात शब्द मैंने मिला है, मेरे मुझे मेरी प्राप्ति वाली पूजा है। 8 प्रकार की पूजा बताई, मूर्ति पूजा, हवन की पूजा, अग्नि के ध्यान की पूजा, सूर्य की पूजा, हृदय में पूजा, ब्राह्मण की पूजा, वेद शास्त्र के रीति रिवाज के अनुसार की पूजा। इन सब पूजाओं से पराकाष्ठा पूजाओं की यह है कि जिसने मुझ सच्चिदानंद को पाया है, ऐसे सद्गुरु की आज्ञा में तन को मन को जीवन को लगा दिया तो मेरे साथ एकाकारता कर लेता है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का आज्ञा। आगे का तुम जानते हो, हे काम विकार तू सुख दे, हे वाहवाई तू सुख दे, हे पुत्र तू सुख दे, हे पत्नी तू सुख दे, तो भिखारी तो भरे है। पुत्र सुख दे, पत्नी सुख दे, पति सुख दे, फलाना सुख दे। आजकल चल पड़ा कि तुझे भगवान ये मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति तुमको सुख देगी। अब मूर्ति बेचारी को पता ही नहीं मैं मूर्ति हूं और सुख कैसे दूं, लेकिन अपना धंधा चलाते हैं कि अपने धर्म में रहो और ये मूर्ति का पूजा करो, ये मूर्ति तुमको सुख देगी। बड़ी बड़ी संस्था के लोग भी ऐसा बोलते। वास्तव में मूर्ति मनुष्य की बनाई हुई है। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतद् सिद्ध है, कोई विरला मुझ चैतन्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। ये तताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्धों में भी, सिद्ध मनांतक अनशुद्ध हो गया, जो चाहा वैसी परिस्थिति वस्तु स्थिति मिल गई वो सिद्ध हो गया, ऐसे सिद्धों में भी कोई विरला मुझको जानता है पाता है। तो हिरणाकश्यपु सिद्ध तो हो गए, धरती अनदे देवे, पर्वत पहाड़ हीरे मोती दे दे, समुद्र अपना रत्न दे देवे, ये सिद्धि तो आ गई। लेकिन इस सिद्धि से सौ गुनी शक्ति तो गंधर्वों के पास है, लोक लोकांतर में जा सकते हैं बिना यान के रूप बदल के, यहां भी आ सकते हैं। गंधर्वों से सौ गुनी ज्यादा सिद्धियां तो पितरलोक में है, पितरों से आजानु देवताओं के पास है, कर्मज देवताओं के पास है, उससे ज्यादा इंद्र के पास है। वो इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी गुरु के आगे बोने मालूम होते हैं। पीतवा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत इंद्रोमपि रंकवत भाषित अन्य से का वार्ता। उस ब्रह्म परमात्मा का रस आत्मरस पीकर योगी उन्मत हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, तीन टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुर बीर बसे तो इंद्र बापड़ा कुण। गरीबी इतनी कि लंगोटी में तीन ठिकड़े हैं, और ऐसी गरीबी कि भाजी खा रहे तांदली की, नमक के पैसे नहीं है, लेकिन अपने हृदयेश्वर की उपासना में के गुरु की आज्ञा रूपी उपासना में लगाए तो अंतरात्मा का ऐसा सुख है कि इंद्र भी उसके आगे बोने पड़ जाते हैं। उसके लिए बाहर की कोई योग्यता की जरूरत ही नहीं है। तुम ग्रेजुएशन कर लो, ये पढ़ लो, इतने पैसे कमा लो, फिर भगवान मिलेंगे या वो सुख मिलेगा, ऐसी बात नहीं। तुम ऐसे सुंदर बनो, ऐसे पढ़े लिखे मलो, ऐसे दक्षिणा धरो, ऐसा करो, फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं। दुनिया की चीजें तो योग्यता से मिलती है, लेकिन भगवान के आगे दुनवी योग्यता की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए दुनवी योग्यताओं की कोई जरूरत नहीं और कोई कीमत नहीं। एक ही जरूरत है कि भगवान को पाने का ईमानदारी का यत्न हो। ये भगवान ने कहा इस श्लोक में। निष्कपट भाव से, फिर चाहे सकाम भाव से चाहो तो दुनियावी चीजें भी मिलेगी, लेकिन मैंने दुनवी चीजों के लिए भगवान की शरण नहीं ली थी, भगवान मिले बस वो लिया था। तो दुनवी चीजें तो उसकी छाया है, अपने आप आती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे लिए ऐसी कैबिन हो, मेरे लिए ऐसी गाड़ी हो, मेरे लिए ये सब। आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो वो उन चीजों के लिए थोड़े, अब वो तो बाकी का नीचे का स्टाफ सब कर लेता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो तुम्हारा भगवान अपना आत्मा होके बैठा है और तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, तुमसे दूर नहीं। तो मन में से वहम निकाल दो कि हम पापी हैं अथवा हम धर्मात्मा हैं। अपने को धर्मात्मा मानोगे तो अहंकार फंसाएगा, और अपने को पापी मानोगे तो हीनता फंसाएगी। लेकिन अपने को भगवान का मानोगे और भगवान को मैं पा सकता हूं तो सारे झंझटों से भगवान उठा लेंगे जल्दी से। इसी को नया संदेश मान लो। चलो, अगर मानने का शौक है दिवाली का संदेश, मैं तो अपने तरफ का तो ऐसा ही दूंगा। आपके कुल खानदान में सुख संपदा रहे, ये रहे, वो रहे। अरे रावण और हिरण्यकश्यप जैसी तो नहीं आ सकती, और वो भी दुखी होके गए, तो ऐसे आशीर्वाद मैं नहीं देना चाहता। मैं तो कहूंगा कि आप ऐसा जानो कि जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं रहता। आप ऐसा पालो कि जिसको पाने के बाद कोई दूसरा महत्वपूर्ण ही न लगे। ऐसे सुख को चख लो कि जिसके आगे सारा इंद्र का सुख भी तुच्छ हो जाए। मैं बोलता हूं तुम पक्का करो। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्म लाभात् परम लाभम न विद्यते। समझ गए? आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है, और आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। उसके आगे रावण की लंका भी बोनी, हिरण्यकश्यपु का हिरणपुर भी बोना, इंद्र का इंद्र पदवी भी बोनी। वो आसानी से मिलता है और चीजें परेशानी से मिलती है, और चीजें परेशानी से मिलती और टिकती नहीं, वो आसानी से मिलता और फिर मिटता नहीं। मेरे को तो सच्चा बढ़िया सौदा मिल गया। 40 दिन क्या होता है, मिल गया आसानी से और लगता है कि मिट गया, चला गया क्या। 44 साल से मारता हूं, कुछ भी नहीं खूटता। अगर खूट गया होता तो तुम बैठ भी नहीं सकते, हुरी होकर के भाग जाते। है कुछ तभी बैठे हो, तुम्हारे जैसे और करोड़ों आ जाए तभी नहीं खूटता हूं। बाहर का धन, बाहर की सत्ता, बाहर की पोस्ट तो ठुस हो जाती है, लेकिन यहां ठुस कराने वाले ठुस हो जाते। आप ईश्वर में लग जाओ, फिर आपसे कोई वैर करता है या कुप्रचार करता है तो प्रकृति उसको बराबर रगड़ रगड़ के ठीक कर देगी। आपके मन में हो चाहे ना हो, प्रकृति का काम है, व्यवस्था है ईश्वर की। तुकाराम महाराज के लिए जिन्होंने जो किया तो उनको, तुकाराम ने तो किसी को कहा ना कहा, लेकिन उनको कुदरत ने अच्छी तरह से रगड़ा। नानक जी के लिए जिन्होंने कुछ किया उनकी हालत बुरी हो गई। कबीर जी के लिए जिन्होंने किया उनका कुल खानदान पूरा हो गया। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई देख लो, रावण कौरव जैसा कंस। जब उनको सताने से ऐसा प्रकृति देती दंड, तो उनके लिए दर्शन सत्संग सेवा तो कितना सारा फायदा होता होगा। आपको हम लोगों को सोचो, मैं उनके दर्शन के लिए तड़फा तो मुझे कितना फायदा हुआ, उनके दीदार के लिए इंतजारी की मैंने कई दिनों तक, बाद में गुरुजी के दर्शन हुए। आपने तो 2-4 घंटे 6 घंटे, सुबह 5 बजे के आए, शाम को 6 बजे दर्शन हुए, तो आपने 13 घंटा इंतजार किया। हमने तो कई दिन इंतजार किया, लेकिन वो सब वसूल हो जाता है। आपका भी तो वसूल हो रहा है। ऐ है, बोलो ऐ है, ऐ है, ऐ है। अथर्ववेद का मंत्र है, इस मंत्र के अर्थ को अपने जीवन में धारण करने वाला शोक से ग्रस्त नहीं होता, भय से भयभीत नहीं होता, चिंता उसको छू नहीं सकती। हाई बीपी, लो बीपी की तो बात ही क्या कहो। बड़ी बड़ी समस्याओं के सिर पर वो नृत्य करता हुआ नित्य नवीन रस को, नित्य नवीन आनंद को, नित्य नवीन परमात्म प्रसाद को पाने में सक्षम हो जाएगा। मानो न मानो ये हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। सदैव सुखी रहना इंसान चाहता है, वही वेद भगवान बोलते हैं और भगवान कृष्ण बोलते हैं। उन वचनों को अपने जीवन में थोड़ा सा भी आत्मसात कर लिया तो दुखों को खोजने पर भी नहीं टिक पाएंगे। सुखों की परवाह नहीं करोगे तो भी सुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे पुरुष की छाया पुरुष का पीछा नहीं छोड़ती, ऐसे ही तुम्हारा सुख पीछा नहीं छोड़ेगा। दुख तुम्हें दबाएगा नहीं। अथर्ववेद का कांड पहला सूक्त 34वां और मंत्र 3रा। मधुमनम में निष्क्रमणम मधुमा, मधुमनम में परायणम, वाचा वदामि मधु मदम, भूयासम मधु संदेश है। मधुमय प्रभु, आपकी प्रेरणा से सामने उपस्थित योग क्षेम संबंधी कर्तव्यों में मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, आवश्यकताओं की प्राप्ति और उनकी सुरक्षा मेरे लिए मधुमय हो। अर्थात उनसे अपने को और दूसरों को सुख मिले, शांति और मधुरता मिले। मेरे दूरगामी कर्तव्य भी मधुमय हो। ऐसा नहीं कि अभी फायदा लिया और बदले में परिणाम में दुख मिले। मैं वाणी से मधुमय ही बोलूं, सभी लोग मुझे मधुमय दृष्टि से प्रेम पूर्वक देखें। हे मधुमय प्रभु, हे मारा वाला, मारा चित्तमा तारा मधुर स्वभाव ने मेरे चित्त में तुम्हारे मधुर स्वभाव, मधुर ज्ञान, मधुमय दूर गामी मेरे निर्णय हो, क्योंकि आप मधुमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, ज्ञानमय हो, परम सबके सुहृद हो और मैं आप ही का बालक हूं। मैं अपनी युक्ति चालाकी से सुखी रहने का जो जो यत्न किया, त्यों त्यों विकारों ने, कपट ने, चालाकियों ने मुझे कई जन्मों तक भटकाया। अब सत्यम शरणम गच्छामि, सत्य स्वरूप ईश्वर की शरण जा रहा हूं। मधुम शरणम गच्छामि, मधुमय ईश्वर में तुम्हारी शरण आ रहा हूं। युक्ति से हम सुखी रहें, चालाकी से हम सुखी रहें, ये भ्रम हमारा टूटा है। आनंद और माधुर्य, परम सुख और परम संपदा युक्ति से चालाकी से नहीं मिलती, अपितु तुम्हारा बनने से ये चीजें सहज में मिलती है। जैसे पुत्र पिता का हो जाता है तो पिता का वारसा पुत्र के हिस्से, ऐसे जीव ईश्वर का होकर कुछ करता है तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की मधुमयता, ईश्वर का सद्भाव, सद्प्रेरणा और साथ मिलता रहता है। सामान्य व्यक्ति में और महापुरुष में यही फर्क है। सामान्य व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई चतुराई से, चालाकी से दुख मिटाकर सुखी रहने का व्यर्थ प्रयास करता है, फिर व्यसनों में और कपटों में न जाने किस किस में बेचारा फंस जाता। लेकिन महापुरुष जो है, पुरुषस्य अर्थ इति पुरुषार्थ, परमात्मा ही पुरुष है। उस परमात्मा पुरुष के अर्थ जो प्रयत्न करते हैं वो वास्तविक पुरुषार्थ करते हैं। जिनका वास्तविक पुरुषार्थ है उन्हें वास्तविक ज्ञान मिलता है, वास्तविक सुख मिलता है। जिस सुख से कोई बड़ा सुख नहीं, जिस ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, जिस लाभ से कोई बड़ा लाभ नहीं। कल का ये सत्संग की भूमिका का आज आगे का पाठ चल रहा है। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम, तथा गीता ने कहा जिस लाभ से बड़ा कोई लाभ उसके मानने में नहीं आता। इंद्र का लाभ भी बहुत बोना हो जाता है, छोटा हो जाता है। उस लाभ को पाने के लिए मनुष्य जीवन की ये मति गति है। आनंद की या प्रभु पाने की युक्ति नहीं होती है। युक्ति से जो मिलेगा वो समय पाकर चला जाएगा। क्रिया से जो मिलेगा, प्रयत्न से जो मिलेगा, चालाकी से जो मिलेगा वो माया के अंतर्गत होगा, और परमात्मा के साथ सहयोग से जो मिलेगा वो माया के पार का होगा। ये कभी ना भूले। नारायण ध्यान से सुन रहे, कोई भी लोग कितनी भी चालाकी करे सब दुख से पार नहीं हुए हैं, नहीं हो सकते। लेकिन शबरी की नाई, तुकाराम की नाई, रहिदास की नाई, नानक और कबीर की नाई, त्रिलंग स्वामी की नहीं, अपना प्रयत्न करे और सत्ता सामर्थ्य और स्नेह ईश्वर का मिला दे, आलसी न हो जाए, भगवान के भरोसे पुरुषार्थ न छोड़ दे। पुरुषार्थ तो करे, लेकिन पुरुषार्थ करने की सत्ता भी वहीं से आ रही है। और पुरुषार्थ उचित है कि अनुचित है, उसकी प्रेरणा भी जहां से शुद्ध मिलती है। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन को कहा, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः, तत् प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अपनी चालाकी युक्ति मेहनत से नश्वर स्थान मिलेंगे। आप शाश्वत है और आपको जो मिला नश्वर है तो आपकी मेहनत मजूरी बन बन के खेल बिगड़ने में ही रहती है। आप नित्य हैं, शरीर अनित्य है और शरीर संबंधी सुविधाएं भी अनित्य है। नित्य को अनित्य कितना भी दो, बिनु रघुवीर पद जी की जरनी न जाई। जीवात्मा की जलन तपन भगवत प्रसाद के बिना नहीं जाएगी। वास्तविक में भगवत प्रसाद मतलब भगवान का अनुभव, जीवात्मा का अनुभव होना चाहिए। पिता का धन, पिता की समझ, पिता का सामर्थ्य बेटे में आना चाहिए। ये प्रसाद है। लोगों ने क्या करा, परसान बनाया, व्यंजन बनाए, ये करा वो करा, चलो इसका हम अना इनकार नहीं करते, लेकिन इन प्रसादों में रुको नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम, प्रसाद वो है जिससे सारे दुख मिट जाए। थोड़ी देर जीव का रसा स्वाद मनमुख लेते, उनकी अपेक्षा भक्त भगवान को भोग लगा कर लेते, अच्छा है ठीक है, लेकिन ये प्रसाद तुम्हारे जीवा का प्रसाद वास्तविक प्रसाद नहीं है। तुम्हें प्रसाद मिल जाए, कई जीवाएं तुमको मिली और चली गई, जल गई, तुम जन कहते हो तो तुम शाश्वत, परमात्मा शाश्वत। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान जो कहना कह, जो कह रहे वो तो मान लो। अयम आत्मा ब्रह्म गुड़ाकेशु सर्वभूतेषु, ये मैं आत्मा चैतन्य ब्रह्म हूँ सब भूत प्राणियों में। जो सब भूत प्राणियों में है, कल बताया था कि मच्छर में भी अक्कल कैसे, कि बड़े बड़े डीजीपी को, ब्रिगेडरों को, तुमको हमको चकमा देने के कला उसमें कहाँ से आती है। वो करोड़िया मकड़ा जाला कैसे बुनता है, कहां से अक्कल आती है। वो अक्कल जड़ से नहीं आती, चेतन से आती, तो मानना पड़ेगा कि उनमें चेतना भी है और ज्ञान भी है। जो भगवान चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्राणी मात्र का सुहृद है, उसकी बात मान लो बस। भगवान कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म गुड़ाकेशु सर्वभूतेषु, आप ये बात मान लो भगवान, मैं ही आत्मा ब्रह्म हूँ सब भूत प्राणियों में हूँ। जल में रस स्वाद मेरा है, पृथ्वी में गंध गुण मेरा है, चंद्रमा और सूर्य में ये जीवन देने की शक्ति मेरी है। रसो अप्सु कौन्तेय है प्रभास्मि शशि सूर्य हो प्रणव सर्व वेदेशु, वेदों में जो ओमकार ध्वनि वो मेरा ही स्वरूप है, तो आप मान लो ना। तो भगवान की बात मान लेने से क्या होगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन की बात मान लेने से क्या होगा कि मन भटका भटका के न जाने कितने चौरासियां भटकाया। 2 करोड़ वर्ष होते हैं जो 1.84 लाख योनि में, 2 करोड़ वर्ष ऐसे कई 2 करोड़ हम आप अपने को सताते सताते आए। अब अपने को सताने से बचाना हो, दुखों से बचाना हो, जन्म मरण से बचाना हो, नश्वर आकर्षणों से बचाना हो, तो आप शाश्वत रस ले लीजिए, शाश्वत सामर्थ्य की ओर देखिए। भगवान सर्वत्र ये कहते हैं तो आपके हृदय में है ना, स्वीकार कर लो। काहेरे बन खोजन जाई, अपने हृदयेश्वर की उपासना में लगो। जिनको हृदयेश्वर की उपासना से मिला है, ऐसे महापुरुषों के वचनों को स्वीकार करके तुरंत आप शोक रहित हो जाओ, द्वंद रहित हो जाओ, भय रहित हो जाओ, वैर राग द्वेष रहित हो जाओ, नित्य सुख में आप तुरंत जग जाओगे, देर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। तो अथर्ववेद का आज मंत्र है, मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमनम में परायणम, वाचा वदामि मधुम मधुमदम, भूयासमम मधु सदृशे। हे मधुमय प्रभु, आपकी प्रेरणा से सामने उपस्थित योग क्षेम संबंधी जो कर्तव्य आ जाए, मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, अर्थात उससे अपने को और दूसरों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मधुरता मिले, मेरे दूरगामी कर्तव्य भी मधुमय हो। करो सड़ो ये करो, जल्दी जल्दी मजा ले लिया, तालियां बजवा ली, वाह वाह करवा लिया, ये बहुत तुच्छ परिणाम है। लोग ताली बजाए चाहे ना बजाए, आपको अच्छा आदमी कहे चाहे ना कहे, लेकिन उनका मंगल दूरगामी कैसे होगा, इसको आप समझ लीजिए। अपना दूरगामी परिणाम मंगल में विचार लीजिए और उनके लिए भी मंगल में करिए, बस हो गया काम। प्रत्यक्ष में जो लाभ दिखता है दूरगामी परिणाम, वो हानि हो सकता है। प्रत्यक्ष में जो हानि और भोलापन या मूर्खता दिखती है, दूरगामी परिणाम मधुमेह हो सकते हैं। एक चोर युवक लड़का था, चोरी की पकड़ने वाले पीछे दौड़े, वो कबीर जी के चरणों में आ गया कि महाराज बता लो, बचा लो, कांप रहा है। अंधेरा है, प्रभात है। कबीर ने कहा क्या बात है? बोले चोरी की गलती हो गई है। बोले कोई बात नहीं, इधर तो पहुंच गया ना, ये भी तो फायदा है। बोले चोरा रहे, पकड़ लेंगे, मारेंगे, बहुत मारेंगे। बोले सो जा, मेरी बेटी सोई है, कमाली, सो जा उसके साथ, कांप मत, मधुमेह भगवान मेरी रक्षा करे, मेरे दुर्गुण छूटे और भगवान जैसा चाहते मैं ऐसा हो जाऊं, ऐसा चिंतन करके सो जा। आए चोर ढूंढते ढांढते, कोई व्यक्ति तुम्हारे अंदर में घुसा, अब कहां सत्य बोलना और कहां परहित परायण होकर क्या बोलना, ये संत और भगवंत जानते हैं, तुच्छ आदमी की मति नहीं।